नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार, इतिहास नवम पेपर के अंतर्गत आज सीरिया में फ्रेंच मैंडेट नामक अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। इस मैंडेट का समयकाल 1920 से 1945 ईस्वी के मध्य माना जाता है। सीरिया पर फ्रेंच शासन की स्थापना 25 अप्रैल 1920 ईस्वी को सैन रेमो सम्मेलन के निर्णय के अनुसार सीरिया फ्रेंच मैंडेट के अधीन कर दिया गया, परंतु इसका एक भाग जो जेरूसलम के संजक के नाम से मशहूर था, ब्रिटेन के पैलेस्टाइन के मैंडेट के रूप में प्राप्त हुआ। इसी समय सीरियन राष्ट्रीय सम्मेलन ने अमीर फैसल को सीरिया का शाह घोषित कर दिया। अतः फ्रेंच सेनापति जनरल गुरोद ने 14 जुलाई 1920 ईस्वी को फैसल को एक चेतावनी दी तथा फ्रांसीसी फौजा ने आगे बढ़कर 21 जुलाई को दमिश्क पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार फैसल का अंत हो गया और सीरिया पर फ्रेंच का कब्जा हो गया। अरब राष्ट्रीयता की आशाएं धूल धूसरित हो गई और फ्रांस में दमनकारी शासन की स्थापना कर दी गई। जनरल गुरोद सीरिया का हाई कमिश्नर नियुक्त हुआ और उसने देश में सैनिक कानून लागू कर दिया। नवीन सीरिया का क्षेत्र 47,95,179 वर्ग मील था। इसके उत्तर में टर्की, दक्षिण में ट्रांसजॉर्डन एवं पैलेस्टाइन, पूरब में इराक और पश्चिम में भूमध्य सागर था। इस विशाल क्षेत्र में मुस्लिम, ईसाई, कुर्द जातियां थी तथा लेबनान क्षेत्र में ईसाइयों की संख्या काफी थी। फ्रांस का इस प्रदेश से प्राचीन संबंध था, अतः फ्रांस ने इस क्षेत्र पर हमला कर कब्जा बनाए रखने का प्रयास किया एवं दमनात्मक नीति का सहारा लिया। गुरोद ने प्रथमतः सीरिया को कई भागों में विभाजित कर दिया। 31 अगस्त 1920 ईस्वी को उसने एक आज्ञा पत्र जारी कर बृहत्तर लेबनान की स्थापना की और इसमें ट्रिपोली, बैरूत, सिडोन, ट्रायर, बालबेक तथा बिका शामिल कर दिए गए। लेबनान ने ईसाइयों की संख्या काफी थी तथा फ्रांस का उसने घनिष्ठ संबंध था, परंतु इन नए क्षेत्रों के जुट जाने से ईसाइयों की संख्या मुसलमानों की अपेक्षा कम हो गई और फ्रेंच शासन के लिए अस्थायी सरदर्द बन गया। तत्पश्चात अलेक्जेंड्रेटा एवं लेबनान के बीच में लटाकिया नामक नए राज्य की स्थापना की गई और इसकी राजधानी सुवेडा रखी गई। इसके अतिरिक्त अलेक्जेंड्रेटा की शासन व्यवस्था सीरिया से पृथक रखी गई और 1924 ईस्वी में दमिश्क तथा ट्रांस जॉर्डन के बीच के क्षेत्र में जबल त्रज नामक एक राज्य कायम किया गया। फ्रेंच फौजों ने जॉर्डन नदी के पूर्वीय क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया था, अतः यह क्षेत्र भी सीरिया से कटकर पृथक हो गया और ब्रिटेन ने यहां पर ट्रांस जॉर्डन नामक राज्य स्थापित किया। इस प्रकार दमिश्क एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्र सीरिया के अंतर्गत रहे। सीरिया के हाथ से ट्रिपोली और बेरूत के बंदरगाह की छिन गए और इसके बहिर्गमन का कोई मार्ग नहीं रहा। वास्तव में फ्रेंच शासकों ने फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई और अरब राष्ट्रीयता की जड़ों को नष्टनाबूद कर दिया। सीरिया के विभिन्न टुकड़ों पर फ्रेंच गवर्नरों का शासन स्थापित किया गया और उन्हें दमिश्क स्थित फ्रेंच उच्चायुक्त के अधीन रखा गया। इस तरह शासन की इकाई पूर्ववत रही और सीरिया में फ्रेंच मैंडेट के काल को नाशकारी संघर्षों का कथा कहा गया है। फ्रेंच शासन और अरब विद्रोह 1920 से 1926 के मध्य। 1920 से 1926 ईस्वी तक सीरिया में सैनिक अफसरों को हाई कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया। इस काल के तीन हाई कमिश्नर गुरोद, बेजेट, सोरायल सेना के ऑफिसर थे। उन्होंने सैनिक कानून लागू रखा और राष्ट्रीयता की भावनाओं को कुचल कर रख दिया। इस काल को अंधापन, भूल एवं बर्बादी का काल कहा गया है, जिसमें मैंडेट के प्रशासकों ने अशांति के बीज बोए और विद्रोह की फसल काटी। इस काल में शासन के सभी भागों को फ्रेंच अधिकारियों ने अपने पंजे में कर लिया और प्रेस एवं प्रचार के साधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। राष्ट्रीयता अथवा सीरिया की एकता संबंधी सभी संगठनों को अवैध घोषित कर दिया गया। उन्होंने सुल्तान अब्दुल द्वितीय का नीति का अनुकरण किया और राज्य के अंतर्गत विभिन्न जातियों के बीच द्वेष एवं भेदभाव का बीजारोपण किया। इसके साथ ही आम निर्वाचन में भी इन अधिकारियों ने राजनीतिक हस्तक्षेप किया और अपने उम्मीदवारों का पक्ष लिया। इस प्रकार इस काल में सीरिया की राजनीतिक आबोहवा दूषित हो गई। परंतु फ्रेंच अधिकारी इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने सीरिया की अर्थव्यवस्था एवं सांस्कृतिक आधारों पर भी चोट की। इस समय सीरिया की मुद्रा पद्धति में आमूल परिवर्तन लाया गया और एक नई लेबनान सीरिया मुद्रा चालू की गई, जिसे फ्रेंच मुद्रा से आबद्ध कर दिया और इसके संचालन की जिम्मेवारी एक फ्रेंच बैंक को दी गई। इस काल में फ्रेंच मुद्रा की कीमत का ह्रास हुआ था, अतः सीरियाई मुद्रा की कीमत भी घट गई। इसके साथ ही एकाधिकार अथवा व्यावसायिक सुविधाओं के मामले में फ्रेंच नागरिकों एवं व्यापारियों को प्राथमिकता दी गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि सीरिया का व्यवसाय वर्ग क्षुब्ध हो गया। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी फ्रेंच शासनाधिकारियों ने चोटें की तथा फ्रेंच भाषा को अरबी के साथ साथ राजकीय भाषा घोषित कर दिया। न्यायालयों तथा शिक्षण संस्थाओं में फ्रेंच भाषा को स्थान दिया गया एवं प्राथमिक विद्यालयों में इसकी शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। इस काल में अधिकांश प्रशासनिक अधिकारी फ्रेंच थे, अतः फ्रेंच भाषा ही प्रमुख माध्यम बन गई और अरबी का स्थान गौण हो गया। अरब संस्थाओं की भी अपेक्षा की जाने लगी और नवीन फ्रेंच संस्थाओं को संगठित किया गया। वास्तव में मैंडेट को राष्ट्रसंघ ने पिछड़े देशों की प्रशासनिक शिक्षा के लिए स्थापित किया था, परंतु फ्रांस ने उसके साथ उपनिवेशों का सा व्यवहार किया। अधिकांश फ्रेंच प्रशासनिक अधिकारियों की योग्यता भी निम्न स्तर की थी तथा वे भ्रष्ट थे। इसका परिणाम यह हुआ कि असंतोष की ज्वाला अंदर ही अंदर सुलगती गई और जनरल सरायल के शासनकाल में जुलाई 1925 में विस्फोट हो गया। विद्रोह और उसके परिणाम। इस विद्रोह का आरंभ जबल ड्रज में हुआ। ड्रज के कबीलों के सरदारों ने फ्रेंच दुर्व्यवहार से तंग आकर 1925 ईस्वी में फ्रेंच दफ्तरों पर आक्रमण कर दिया और विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। असंतोष की अग्नि सर्वत्र सुलग रही थी, अतः इस विद्रोह ने शीघ्र ही राष्ट्रीय आंदोलन का रूप धारण कर लिया और इसका नारा एकता एवं स्वतंत्रता हो गया। इस विद्रोह के प्रमुख नेता डॉक्टर शाह बंदर, फारिस बे अल खुड़ी एवं सुल्तान अल अतरस के परिवार के थे। आरंभ में विद्रोहियों को काफी सफलता मिली। इन्होंने दो फ्रेंच टुकड़ियों को परास्त कर दिया तथा होम्स, हामा, सुवेदा, अलेपो, दमिश्क पर कब्जा कर लिया। इनकी सफलता से फ्रेंच फौज अधिकारी घबरा उठे। लेबनन में फ्रेंच फौजों की संख्या बढ़ा दी गई और आर्मेनियन एवं सरकासियन जातियों को शस्त्र देकर विद्रोह से भिड़ा दिया गया। अक्टूबर 1925 ईस्वी में दमिश्क पर भीषण बमबारी की गई, जिससे हजारों व्यक्तियों की हत्या हुई एवं धन जन का गुरुतर नुकसान हुआ। इस घटना से जनरल सरायह की काफी बदनामी हुई और उसे वापस बुला लिया गया। उसके स्थान पर हेनरी डी जुवेनल हाई कमिश्नर नियुक्त हुआ। इसने विद्रोह का दमन जारी रखा और मई 1926 ईस्वी में पुनः दमिश्क पर बम वर्षा की। स्थिति की भीषणता को देखकर अगस्त 1926 ईस्वी में एम पॉन्सट नामक एक सैनिक अधिकारी को हाई कमिश्नर बनाकर भेजा। 1926 ईस्वी के अंत तक विद्रोह प्रायः दबा दिया गया और उसने सीरिया के राष्ट्रवादी नेताओं के साथ वार्तालाप आरंभ किया। सीरिया का नवीन संविधान 1930 ईस्वी। सीरियाई राष्ट्रवादियों से वार्तालाप करके 1928 ईस्वी में पॉन्सॉट ने सीरिया की संविधान सभा के लिए निर्वाचन का आयोजन किया, जिसमें कि नया संविधान निर्मित हो। इस आम निर्वाचन से संविधान सभा में राष्ट्रवादियों के जबरदस्त गुट कुतला से काफी सदस्य निर्वाचित हुए। इनका नेता इब्राहिम हननू था तथा हासिम अल अतासी, जमील मार्दन बे, सादुल्ला अल जाबरी और फारिस अल खुरी इसके प्रमुख सदस्य थे। इस प्रकार सुकड़ी अल कुतवाली के नेतृत्व में इस्तिकलाल दल के सदस्य भी पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षपाती थे। इसके अन्य नेता आदिल अरसलान और रियाद सुलह थे। इन सबों ने सीरिया के लिए नवीन संविधान निर्मित किया जिसमें पैलेस्टाइन, ट्रांसजॉर्डन और लेबनान को सीरिया में सम्मिलित कर संयुक्त सीरिया की व्यवस्था की गई। इसकी सुरक्षा एवं विदेश नीति के लिए फ्रांस को उत्तरदायी नहीं रखा गया। ऐसी अवस्था में नवीन संविधान पॉन्सोट को मान्य नहीं हुआ, उसने संविधान सभा को भंग कर दिया, परंतु वह सीरिया में संवैधानिक सुधार लाना चाहता था। अतः उसने मई 1930 ईस्वी को सीरिया के लिए एक नवीन संविधान की घोषणा कर दी। इसके अनुसार जबलडूज और लताकिया को सीरिया से पृथक रखा गया और 116वीं धारा द्वारा सुरक्षा एवं वैदेशिक नीति में फ्रांस को राष्ट्रसंघ के समक्ष जिम्मेवारी दी गई। सीरिया, लेबनान आदि विभिन्न भागों के पारस्परिक संबंधों को परिचालन फ्रेंच अधिकारियों के जिम्मे रखा गया। इस प्रकार सीरिया में नया संविधान लागू कर दिया गया और 1932 ईस्वी में सीरिया के एक सदनात्मक लोकसभा का आम निर्वाचन हुआ। इसमें नरम दल वालों को बहुमत प्राप्त हुआ और उन्होंने मोहम्मद अली अल आबिद को अपना राष्ट्रपति निर्वाचित किया। मोहम्मद अली अल आबिद ने हकी अल आजाम को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार सीरिया में फ्रेंच मैंडेट के अंतर्गत गणराज्य की स्थापना हुई, परंतु इससे सीरिया के राष्ट्रवादी संतुष्ट नहीं हुए। वे विधानसभा में काफी संख्या में थे तथा मैंडेट के अंत के लिए आंदोलन कर रहे थे। 1930 ईस्वी की एंग्लो इराकी संधि के कारण इनकी मांगों को और भी बल मिला और वे उसके लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। लेबनान, लताकिया एवं अलेक्जेंड्रेटा 1920 से 1939 ईस्वी के मध्य। लेबनान, लेबनान पहले सीरिया के अंतर्गत था, परंतु जनरल गुरोद ने उसे सीरिया से पृथक कर शासन की अलग व्यवस्था की। लेबनान फ्रेंच संस्कृति का केंद्र था तथा यहाँ ईसाइयों का बहुमत था। नए अरब क्षेत्रों को मिला देने से यहाँ पर मुस्लिम बहुमत कायम हो गया, परंतु फ्रेंच अधिकारियों ने लेबनान के प्रति पक्षतापूर्ण व्यवहार जारी रखा और उसे शक्तिशाली बनाने की पूर्ण चेष्टा की। इसका परिणाम यह हुआ कि लेबनान में वैधानिक प्रगति सीरिया से पहले हुई। 1925 ईस्वी में ही जब सीरिया के अन्य क्षेत्रों में विद्रोह के बादल छा रहे थे तो लेबनान की प्रतिनिधि काउंसिल ने एक संविधान तैयार किया जो 1926 ईस्वी में हाई कमिश्नर द्वारा लागू कर दिया गया। इसके अनुसार लेबनान गणराज्य की स्थापना की गई और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका एवं मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई। संविधान की 30वीं धारा में फ्रांस के मैंडेट संबंधी विशिष्ट अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया गया। इस संविधान में 1927 ईस्वी एवं 1929 ईस्वी में संशोधन लाए गए तथा व्यवस्थापिका को एक सदनात्मक बना दिया गया। लेबनान में अपेक्षाकृत शांति कायम रही, परंतु 1931 ईस्वी के विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने लेबनान में तबाही मचा दी। इससे बेरोजगारी एवं दरिद्रता में वृद्धि के साथ साथ सर्वत्र हड़ताल एवं उपद्रव होने लगे। 9 मई 1932 ईस्वी को पॉन्सोट ने संविधान को मुलतवी कर दिया और एक सामयिक सरकार की स्थापना की तथा आर्थिक संकट को दूर करने का उपाय किया। ऐसी स्थिति में फ्रेंच अधिकारियों को भान हुआ कि लेबनान संसदीय शासन के योग्य नहीं है। अतः 2 जनवरी 1934 ईस्वी को पॉन्सोट के उत्तराधिकारी काउंट डी मार्टेल ने एक नवीन संविधान की घोषणा की। इसके अनुसार संसद की शक्ति कम कर दी गई और कार्यकारिणी की शक्ति में वृद्धि कर दी गई। संसद में विभिन्न व्यवसायों के लिए प्रतिनिधित्व का प्रबंध किया गया और राज्य को से खर्च नियंत्रित कर दिया गया। लेबनान में भी एमिल एडे के नेतृत्व में एकतावादी दल तथा विश्रा अल खुड़ी के नेतृत्व में संविधानवादी दल पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहा था। मुस्लिम एवं ईसाई धर्म के नेताओं का भी राजनीति में जोर था तथा इसमें राजनीतिक संतुलन कायम रखने के लिए मैरोनाइट ईसाई राष्ट्रपति एवं सुन्नी मुस्लिम प्रधानमंत्री की परंपरा स्थापित हुई। सीरिया से पृथक रहने पर भी लेबनान का सीरिया से अभिन्न संबंध बना रहा और यहां की राजनीतिक प्रगति सीरिया के साथ साथ ही हुई। लताकिया। लताकिया क्षेत्र में भी इस काल में प्रायः शांति रही। इस क्षेत्र में अलवी संप्रदाय के लोग निवास करते थे तथा वे सीरिया के सुन्नी मुसलमानों द्वारा शासित होना नहीं चाहते थे। फ्रेंच अधिकारियों ने इस भावना को और भी विकसित किया और इस क्षेत्र के आर्थिक प्रगति पर जोर दिया। इससे इस क्षेत्र में फ्रांस के विरुद्ध आंदोलन की जड़ें अधिक मजबूत ना हो पाई और 1930 ईस्वी के संविधान से पृथक ही रखा गया। अलेक्जेंड्रेटा। अलेक्जेंड्रेटा के आरंभ में सीरिया के साथ रखा गया, परंतु इसके शासन का इंतजाम अलग था। यहां तुर्क जाति काफी संख्या में निवास करती थी और टर्की इस क्षेत्र पर अपना दावा रखता था। अतः दिसंबर 1936 ईस्वी में यह मामला राष्ट्रसंघ की काउंसिल के समक्ष पेश हुआ। काउंसिल ने इस क्षेत्र की आंतरिक स्वशासन पर जोर दिया एवं वैदेशिक मामलों और आर्थिक संबंधों के लिए सीरिया को जिम्मेदारी दी, परंतु तुर्की भाषा को सरकारी भाषा बनाने का प्रस्ताव रखा। वैदेशिक मामलों में काउंसिल ने सीरिया के हाथ में विशिष्ट जिम्मेदारी दी, परंतु इस पर नियंत्रण के लिए काउंसिल में प्रतिनिधि के रूप में एक फ्रेंच प्रतिनिधि को अलेक्जेंड्रेटा में रखा गया और उसे वीटो का अधिकार दिया गया। अंत में 29 मई 1937 ईस्वी को इस देश के लिए एक पृथक शासन व्यवस्था कायम की गई और फ्रांस तथा टर्की ने एक संधि कर इसकी क्षेत्रीय एकता बनाए रखने की जिम्मेवारी ली। सीरिया में इसका काफी विरोध हुआ था, परंतु फ्रांस टर्की की मैत्री के लिए आतुर था। इस समय द्वितीय महायुद्ध के बादल मंडरा रहे थे, अतः फ्रांस ने टर्की को अपने पक्ष में मिलाने के लिए 23 जुलाई 1938 ईस्वी को इस क्षेत्र में तुर्क फौजों को रखना मंजूर किया। सितंबर 1938 ईस्वी में इस क्षेत्र में आम निर्वाचन हुआ, जिसमें तुर्क प्रतिनिधियों को बहुमत प्राप्त हुआ और इस क्षेत्र के हैते का गणराज्य घोषित कर दिया गया, जिसमें फ्रांस एवं टर्की का द्वैत शासन आरंभ हुआ। तत्पश्चात 23 जून 1939 ईस्वी को टर्की में एक संधि हुई और उसी दिन फ्रांस ने इस क्षेत्र को टर्की के हाथ सौंप दिया। इस तरह अलेक्जेंड्रेटा सीरिया से पृथक हो गया और वह टर्की का एक अंग बन गया। सीरिया एवं लेबनान में स्वराज्य का विकास। 1933 से 1945 ईस्वी के मध्य सीरिया के राष्ट्रवादी आंदोलन की मांगों के परिणाम स्वरूप पॉन्सॉट ने 1933 ईस्वी के आरंभ में एक मसविदा तैयार किया, जो कि 1930 ईस्वी की आंग्ल इराकी संधि पर आधारित था, परंतु इसमें आंतरिक प्रभुसत्ता एवं क्षेत्रीय एकता के सिद्धांतों की अवहेलना की गई। अतः राष्ट्रवादियों ने इसे नामंजूर कर दिया। ऐसी परिस्थिति में अक्टूबर 1933 ईस्वी में पॉन्सॉट का स्थान नवीन हाई कमिश्नर काउंटर डी मार्टेल ने लिया और उसने व्यवस्थापिका सभा को मुलतवी कर सारी शक्ति अपने हाथ में केंद्रित कर ली। इसने अब अपना ध्यान आर्थिक विकास पर लगाया, परंतु राष्ट्रवादियों का आंदोलन जारी रहा और इसमें प्रगति होती रही। ऐसी अवस्था में मार्टेल ने जनवरी 1936 ईस्वी को राष्ट्रवादी दल के दफ्तरों पर आक्रमण किया एवं उन पर ताला लगा दिया तथा राष्ट्रवादी नेताओं को निर्वासित किया। इससे सारे सीरिया में देशभक्ति की लहर दौड़ गई और देशव्यापी हड़ताल हो गई। अब सारे व्यवसाय ठप्प पर गए। यह हड़ताल 6 सप्ताह तक चलती रही। अंत में मार्टेल को झुकना पड़ा। उसने 25 फरवरी 1936 ईस्वी को सभी राष्ट्रवादी नेताओं को मुक्त कर दिया एवं उन्हें संधि की बातचीत के लिए आमंत्रित किया। 1936 ईस्वी में 6 राष्ट्रवादी सदस्यों का एक मंडल हाशिम बे अल अताशी की अध्यक्षता में पेरिस गया तथा वहां पर 9 सितंबर 1936 ईस्वी को फ्रेंच सीरियन संधि हुई, जिसे 25 वर्षों के लिए जायज माना गया। इसके अनुसार सीरिया 3 साल के अंदर स्वतंत्र होने वाला था तथा इसके अंत में फ्रांस उसे राष्ट्रसंघ की सदस्यता दिलाने को तैयार हुआ। सीरिया में लताविया तथा जेबलेन जेड्रूज शामिल रखे गए, किंतु इसके प्रशासनिक स्वराज्य की व्यवस्था की गई। फ्रांस को सीरिया में 2 वायु अड्डे रखने का अधिकार मिला एवं लताकिया और जेबलेन ड्रूज में वह 5 साल तक स्थल सेना भी रख सकता था। सेना के प्रशिक्षण तथा शिक्षा एवं उद्योग के क्षेत्र में सीरिया को फ्रांस से मदद लेनी थी। फ्रेंच राजदूत को सीरिया में सभी राजदूतों से ऊपर स्थान मिलना तय हुआ। आर्थिक क्षेत्र में भी फ्रांस को विशिष्ट सुविधाएं प्राप्त हुई। इस संधि के तुरंत पश्चात 1936 ईस्वी में के अंत में सीरिया में आम निर्वाचन हुआ, जिसमें राष्ट्रवादियों की विजय हुई और हाशिम अल अतामी नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और जमील मर्दन बे प्रधानमंत्री बने। नवीन संसद ने फ्रेंच सीरिया संधि को अंतिम स्वीकृति दे दी और जेबलेन ड्रूज तथा लताकिया को सीरिया में मिला लिया। हाई कमिश्नर ने भी धीरे धीरे प्रशासनिक कार्यों को नई सरकार के हाथ में देना आरंभ कर दिया। इस प्रकार राष्ट्रवादियों का लक्ष्य पूर्ण होता दिखाई देने लगा। लेबनान। सीरिया की राजनीतिक प्रगति के समान लेबनान ने भी प्रगति की। फ्रेंच सीरियन संधि के शीघ्र ही बाद 13 नवंबर 1936 ईस्वी को बेरूत में मार्टेल एवं एमिल एडे के बीच फ्रेंच सीरियन संधि की शर्तों को प्रायः दोहरा दिया गया, परंतु यहां पर फ्रांस के सैनिक अधिकार काफी व्यापक रखे गए और उसे किसी भी भाग में सेना रखने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त अल्पमतों के संबंध में भी कुछ विशेष व्यवस्था रखी गई। इस संधि से लेबनान के मुसलमानों को खुशी नहीं हुई, परंतु 1937 ईस्वी में पुराने संविधान को फिर से स्थापित किया गया और एक नई विधि द्वारा व्यवस्थापिका सभा में 2/3 एवं 1/3 मनोनयन की व्यवस्था रखी गई। इस आधार पर 1937 ईस्वी के अंत में निर्वाचन हुआ और यहाँ की सभा में फ्रेंच लेबनानी संधि को अंतिम स्वीकृति दे दी गई, परंतु यहाँ की राजनीति में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं आया तथा राजनीति का पुराना क्रम जारी रहा। सीरिया एवं लेबनान और द्वितीय महायुद्ध। सीरिया एवं लेबनान की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं शीघ्र ही द्वितीय महायुद्ध के झंझावात में नष्ट भ्रष्ट हो गई। फ्रांस में इस काल में राष्ट्रीय सुरक्षा पर जर्मन खतरे की आशंका दिख पड़ने लगी। अतः फ्रांस ने प्रथमतः सीरिया एवं लेबनान से की गई संधियों को अंतिम स्वीकृति देने में आनाकानी शुरू की तथा बाद में इनकार कर दिया। इसके बाद उसने अलेक्जेंड्रेटा टर्की को सौंपकर सीरिया की क्षेत्रीय एकता पर जबरदस्त चोट की। इससे सीरियाई नेताओं की आशाओं पर वज्रपात हो गया और 7 जुलाई 1939 ईस्वी को राष्ट्रपति हाशिम अतासी ने पदत्याग कर दिया। इसके बाद मार्टेल के उत्तराधिकारी गैब्रियल पो ने संविधान को स्थगित कर दिया तथा व्यवस्थापिका को भंग कर दिया और अपने अधीन देशों में शासन के लिए काउंसिल की व्यवस्था की। इसके साथ ही जब लैंड्रूज तथा लटाकिया में पृथक शासन की व्यवस्था कर शासन की शक्ति अपने हाथ में ले ली। सितंबर 1939 ईस्वी में द्वितीय महायुद्ध के आरंभ के बाद लेबनान में भी यही प्रक्रिया दोहराई गई, परंतु यहाँ राष्ट्रपति को अपने स्थान पर रहने दिया गया और मंत्रिमंडल के स्थान पर एक राज्य सचिव नियुक्त किया गया जिसे हाई कमिश्नर के आदेशों का पालन करना था। इस प्रकार सीरिया एवं लेबनान पर फ्रांसीसी शिकंजा पुनः जकड़ दिया गया। युद्धकाल में स्वतंत्रता आंदोलन को अवैध घोषित कर दिया गया तथा एक विशाल फ्रेंच फौज जनरल वेजॉर्ड की अध्यक्षता में सीरिया में रख दी गई। परंतु जून 1940 ईस्वी में फ्रांस का पतन हो गया और इसके कारण स्थिति में मौलिक परिवर्तन आ गया। मार्शल पेता की नई विशि सरकार जर्मनी की कठपुतली थी तथा इसी सरकार का शासन जनरल डेंज ने इटली एवं जर्मनी के सेनाओं को सभी सुविधाएं प्रदान की और इन्हें शीघ्र ही सीरिया एवं लेबनान में अपना केंद्र कायम किया। जर्मन सेनाओं ने इराक के रशीद अली को यहां से मदद भेजी, परंतु इसके विपरीत फ्रेंच नेता जनरल दगाल ने लंदन में एक स्वतंत्र फ्रेंच सरकार की स्थापना की और जर्मन एवं विशी सरकार के विरुद्ध आंदोलन जारी रखा। ब्रिटेन इस आंदोलन का समर्थक था एवं उसने स्वतंत्र फ्रेंच सरकार के साथ संधि कायम कर रखे थे। ऐसी अवस्था में सीरिया एवं लेबनान से जर्मन प्रभाव के अंत के लिए 8 जून 1941 ईस्वी को ब्रिटिश फौजों ने सीरिया पर आक्रमण कर दिया। इसी दिन फ्रेंच कमांडर जनरल कात्रो ने घोषित किया कि स्वतंत्र फ्रेंच सरकार का उद्देश्य सीरिया एवं लेबनान को स्वतंत्र करके उनके साथ संधि स्थापित करने की है। इस तरह की घोषणा कैरो स्थित ब्रिटिश राजदूत सर माइल्स लैम्पसन ने भी की। 14 जुलाई को जेन्सर डेंज ने युद्ध विराम की संधि की जिसके अनुसार सीरिया एवं लेबनान पर ब्रिटिश सैनिक का कब्जा हो गया तथा सितंबर 1941 ईस्वी को ब्रिटेन ने इस क्षेत्र को आर्थिक दृष्टि से भी अपने गुट में मिला लिया एवं इसे स्टर्लिंग गुट में सम्मिलित कर लिया। स्वतंत्र फ्रेंच सरकार की ओर दगाल ने जनरल कात्रो को सीरिया एवं लेबनान में प्रधान प्रतिनिधि नियुक्त किया और उसे पूर्ण शक्ति प्रदान की गई तथा उसे इन दोनों देशों के साथ संधि करने का हुक्म दिया। इस प्रकार युद्धकाल में ही इन दोनों देशों की आजादी का मार्ग प्रशस्त हो गया। सीरिया एवं लेबनान के साथ फ्रांसीसी संबंध 1941 से 1945 के मध्य। ब्रिटिश सैनिक कब्जे के पश्चात मित्र राष्ट्रों के झंडे के नीचे सीरिया लेबनान में फ्रेंच प्रभाव पुनः कायम हो गया। इस काल में आरंभ से ही ब्रिटेन एवं फ्रांस ने इस देशों में स्वतंत्रता कायम करने की नीति निर्धारित की। अतः जनरल कात्रो ने 28 सितंबर 1941 ईस्वी को सीरिया एवं 26 नवंबर 1941 को लेबनान की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इन देशों को विदेशी राजदूत नियुक्त करने, सेना संगठित करने तथा आंतरिक स्वशासन की छूट दी गई, परंतु युद्धकाल में इन्हें मित्र राष्ट्रों को पूर्ण सैनिक सुविधाएं प्रदान करनी थी। इस घोषणा के पश्चात कात्रो ने शेख ताजुद्दीन को सीरिया का एवं अल्फ्रेड नाकाच को लेबनान का राष्ट्रपति मुकर्रर किया। ब्रिटेन ने शीघ्र ही इन दोनों देशों को मान्यता दे दी तथा फरवरी 1942 ईस्वी में जनरल स्पीयर्स को राजदूत बनाकर भेजा तथा कतिपय अन्य देशों ने भी ब्रिटेन का अनुकरण किया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी जॉर्ज वैड्सवर्थ को कूटनीतिक दूत नियुक्त किया। तत्पश्चात मार्च 1943 ईस्वी इन दोनों के संविधान को पुनर्जीवित किया गया तथा आम निर्वाचन कराए गए। इसके परिणाम स्वरूप सीरिया में राष्ट्रवादी दल विजयी हुआ एवं थुकड़ी अल कुआतली राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। लेबनान में भी विसरा अल खुरी राष्ट्रपति और रियाद अस सुलह प्रधानमंत्री बने। यहां भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता के पक्षपातियों की सरकार बनी, अतः दोनों देशों में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उत्कट हो गई। परंतु अभी भी फ्रेंच प्रतिनिधि के हाथ में विधायिका एवं कार्यकारिणी संबंधी महत्वपूर्ण शक्तियां थी। वह स्वयं अनुज्ञा प्रसारित कर सकता था एवं मैंडेट की शर्तों के अनुसार आंतरिक शांति, बाह्य सुरक्षा एवं वैदेशिक नीति के लिए जिम्मेवार था। उसके हाथ में स्थानीय फौज, आंतरिक सुरक्षा, पुलिस एवं फ्रेंच गुप्त पुलिस थी। प्रेस पर उसका नियंत्रण था तथा राजकीय शासन एवं अर्थव्यवस्था में फ्रेंच विशेषज्ञ एवं सलाहकार भरे थे। इस प्रकार शासन पर फ्रेंच प्रभाव काफी गहरा था, अतः इन दोनों देशों ने इन सभी अधिकारों के अंत की मांग की। परंतु फ्रेंच सरकार ने राष्ट्रसंघ अथवा अन्य विश्व संगठन की अनुमति के बिना वैसा करने से इनकार कर दिया। लेबनान में भी इसकी भीषण प्रतिक्रिया हुई तथा 8 नवंबर 1943 ईस्वी को लेबनानियन संसद ने एक प्रस्ताव द्वारा फ्रांस के सभी अधिकारों का अंत कर दिया और संविधान में फ्रांस संबंधी सभी धाराओं को रद्द कर दिया। जनरल कात्रो के उत्तराधिकारी हैलो ने इसके प्रत्युत्तर में राष्ट्रपति एवं मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। संविधान को स्थगित कर दिया गया एवं एडेक को राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त कर दिया गया। फलस्वरूप देशव्यापी हड़ताल एवं दंगे हुए और दगाल ने हैलो को वापस बुलाकर जनरल कात्रो को पुनः शांति स्थापित करने के लिए भेजा। इसने आकर संविधान को पुनर्प्रतिष्ठित किया और गिरफ्तार नेताओं को पुराने पदों पर भेज दिया। 22 दिसंबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र फ्रेंच सरकार एवं सीरिया और लेबनान के बीच एक संधि हुई, जिसके अनुसार इन दोनों सरकारों के हाथ में शक्ति हस्तांतरित करने का निर्णय किया गया। 24 जनवरी 1944 ईस्वी को सीरिया के राष्ट्रपति एवं संसद सदस्यों ने संविधान के प्रति वफादारी की शपथ ली, लेकिन उसकी 116वीं धारा को, जो फ्रांसीसी अधिकारों से संबंधित थी, उसे बहिष्कृत कर दिया। शनैः शनैः 1944 ईस्वी में फ्रेंच प्रतिनिधि ने अपने अधिकारों को हस्तांतरित करना आरंभ किया। जुलाई 1944 ईस्वी में सोवियत रूस एवं सितंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे पूर्ण मान्यता दे दी। याल्टा निर्णय के अनुसार दोनों ने 1 मार्च 1945 ईस्वी को जर्मनी एवं जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी तथा अप्रैल में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर हस्ताक्षर किया तथा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में शामिल होकर संयुक्त राष्ट्र की मौलिक सदस्यता प्राप्त कर ली। इस प्रकार इन दोनों देशों की प्रभु सत्ता प्रायः स्वीकृत कर ली गई। इसके अतिरिक्त 22 मार्च 1945 ईस्वी को इन्होंने अरब लीग सदस्यता भी हासिल कर ली, परंतु अभी भी फ्रेंच फौज इन दोनों देशों में वर्तमान थी तथा आंतरिक फौज फ्रेंच प्रतिनिधि के हाथ में था। फ्रांस विशिष्ट सामरिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सुविधाओं की प्राप्ति के बिना हटने को तैयार नहीं था। उसने 15 मार्च 1945 ईस्वी को लेबनान में फौज की संख्या में वृद्धि लाई। इसके परिणाम स्वरूप सीरिया एवं लेबनान में फ्रांस विरोधी प्रदर्शन एवं हड़ताल हुए तथा इन दोनों देशों ने फ्रांस के साथ कूटनीतिक संबंध विच्छेद कर लिया। ऐसी संकटमय स्थिति में ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल ने मई के अंत में दगाल को चेतावनी देते हुए फौज कार्यवाही बंद करने को कहा। उसका तुरंत पालन किया गया। अब सीरिया तथा लेबनान में 21 जून 1945 ईस्वी को एक संयुक्त घोषणा द्वारा सभी फ्रेंच अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया और आंतरिक सुरक्षा फौज को राष्ट्रीय नियंत्रण में ले लिया गया। 7 जुलाई 1945 ईस्वी को फ्रांस ने भी इस पर अपनी स्वीकृति दे दी। इस तरह सीरिया एवं लेबनान पर फ्रेंच मैंडेट का अंत हो गया। अब इस दोनों देशों ने विदेशी फौजों के हटाने पर जोर दिया। ब्रिटिश और फ्रांस दोनों ने 13 दिसंबर 1945 ईस्वी को एक संयुक्त घोषणा द्वारा अपनी अपनी फौजें धीरे धीरे हटाने का वादा किया, परंतु सीरिया और लेबनान शीघ्रता के पक्ष में थे, अतः इन्होंने यह मामला 4 फरवरी 1946 ईस्वी को सुरक्षा परिषद में पेश किया। इसमें संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव रखा जिसमें शीघ्र फौजें हटाने के लिए इस देशों के बीच वार्तालाप पर जोर दिया गया, परंतु इस प्रस्ताव की लचरता के कारण सोवियत संघ ने इसे अस्वीकृत कर दिया। फिर भी ग्रेट ब्रिटेन एवं फ्रांस ने अप्रैल में अपनी फौजें हटाने की घोषणा कर दी तथा अधिकांश फौजें उसी महीने में हटा ली गई। 1946 ईस्वी के अंत तक सभी विदेशी फौजें इस दोनों देशों से हटा ली गई तथा ये दोनों देश स्वतंत्र हो गए। इस प्रकार वर्षों के प्रयास के बाद इन्हें मुक्ति मिली तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ये दो स्वतंत्र सदस्य के रूप में उदित हुए। इसके साथ ही यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।